I was in a meeting once when the speaker stood at the pulpit and never seen an audience like this. He looked left, he looked right, and said thank you and sat down. He left all the time to me. You're a splendid sight to behold. I'm a man of memories. I think back of my youth, of the visiting teachers that came to our home. I think of my mother trying to...
मैं अपनी माँ की याद करती हूँ, जो हमारे visiting teacher को जो हमें visit करते थे.
I remember being
called. मैं याद करता हूँ जब मैं bishop को नियुक्ति मिली, और हमारे widows और बूढ़ियों को देखभाल करने के लिए. मैं याद करता हूँ क्रिसमस के दिन घर ना होने के लिए, जहाँ मेरी बीवी है, और उसे समझाने के लिए कि मैं घर नहीं हो सकता क्योंकि मैं दूसरे बुढ़ियों को विजिट कर रहा था.
He was in the poultry business. And how they'd welcome me, each one.
और मैं याद करता हूँ कि वो सब महिलाओं मुझे कितनी स्वागत करते थे और कहते थे टॉमी आ गया, टॉमी आ गया. हर बुरी महिला मुझे पूछती थी कि बात करने के लिए.
One time three in one day.
एक दिन मैं तीन, कभी कभी दस, ग्यारह, बारह. मेरी बातें बहुत टेंडर है. मेरी आत्मा बहुत खुश है. हमें बहुत आशीर्वाद दी है म्यूजिक के लिए.
हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी प्रार्थना हमारे पास रहे. मैं एक छोटे किस्से से शुरू करूंगा, मैं जो मेरे विषय व्यतीत करेगा. एक जवान धनपति लिसा और जॉन एक नए इलाके में रहने आए थे. एक सुबह जब वो नाश्ता कर रहे थे, लिसा ने खिड़की से बाहर देखा और अपने पड़ोसों को कपड़े सुखाते पाया. वो कपड़े साफ नहीं है, लिसा ने बोला. हमारे पड़ोसों कपड़े साफ करना नहीं जानती. जॉन ने भी देखा मगर चुप रहा. हर बार जब उसकी पड़ोसी अपने कपड़े सुखाने जाती, लिसा वो बात बोलती. कुछ हफ्तों बाद लिसा ने देखा कि उसके पड़ोसियों की आंगन में सुंदर और साफ कपड़े सूख रहे हैं. उसने अपने पति से कहा, देखो जॉन, आखिर में वो सही तरीके से धोना सीख गया. उसे ये कैसे? जॉन ने उत्तर दिया, अच्छे प्रिय, मेरे पास तुम्हारे लिए जवाब है. तुम्हें खुशी होगी जहाँ मैं आज सुबह जल उतर उठा जब खिड़कियों को धोया. आज रात मैं आपके साथ कुछ विचार बताना चाहूँगा कि क्यों हम इस दूसरे के किस नज़रिए से देखते हैं के बारे में. क्यों हम ऐसे खिड़कियों से देख रहे हैं जिसको सफ़ी की ज़रूरत है? हम दूसरों के ओर देखते हैं, क्या देखते हैं? हम उनके बारे में क्या निर्णय बनाते हैं? उधारकर्ता ने कहा, दोष मत लगाओ, और कहता गया, तू क्यों अपने भाई की आंख के तीखे को देखता है और अपनी आंख का लकड़ी तुझे नहीं सुझाता?
But consider it's not the soiled window in your own house. None of us is.
हम में से कोई संपूर्ण नहीं. मैंने किसी को नहीं जाना जो अपने आप को संपूर्ण कहता हो, और फिर भी किसी कारण हमारे कमी के बावजूद हमारी आदत हो जाती है किसी के काम करने के ढंग या जो वो नहीं करता पर दोष लगाते हैं. वास्तव में कोई तरीका नहीं है किसी के दिल विचार या परिस्थितियों को जानने का जो कुछ बोल रहा है या कर रहा है जिससे कि हमें दोष लगाने का वजह मिले। 40 और 7 वर्ष पहले इसी महिला सम्मेलन में मुझे 12 देवियों की परिषद में सेवा प्रदान करने की नियुक्ति दी गई। उस समय में गिरजाघर के एक जनरल प्रवक्ता समिति में सेवा प्रदान कर रहा था और इसलिए मेरा नाम पुकारने से पहले मैं उसे प्रवक्ता समिति के सदस्यों के साथ बैठा था जैसे मुझे करना था। हालांकि मेरे पति पत्नी नहीं जानती थी कि कहाँ बैठना है और इसके किसके साथ और टैबरनकल में कोई बैठाने की जगह नहीं मिल रही थी। हमारी एक अच्छी मित्र जो एक जनरल ऑक्सिलरी बोर्ड के सदस्य थी और जो बोर्ड सदस्यों के लिए दिए गए जगह पर बैठी थी ने बहन मानसून को अपने साथ बैठाया। यह महिला मेरे नियुक्ति के बारे में कुछ नहीं जानती थी जो थोड़ी देर में बताया जाएगा, मगर उसने बहन मानसून को देखा, उसकी चिंता को पहचाना और दया से उसे एक जगह दी। मेरे प्यारी पत्नी ने कृपया विहार से आराम पाई और आभारी थी। बैठे हुए हालांकि उसने जोर की फुसफुसाहट सुनी। अपने पीछे जब एक बोर्ड सदस्य अपना क्रोध जाहिर कर रहे थी आसपास के लोगों से कि उनके साथ का बोर्ड सदस्य के पास उतना हिम्मत थी कि वो एक गैर सदस्य को सिर्फ उनके लिए दिए गए जगह पर बताए। उसके दुर्व्यवहार की किसी ने माफ़ी ना ली, चाहे जिसके किसी को भी वहां बताया गया हो। बल्कि मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं कि कैसा उस महिला ने महसूस किया होगा जब उसे पता लगा कि वो अजनबी सबसे नई देवदत्ती की पत्नी है। न सिर्फ हम दूसरों के कार्य और शब्दों में दोष निकालने के लिए इच्छा चाहते हैं, मगर हमें ऐसे ही लोग दिखावट के जो दोष देते हैं। बाहरी रूप देकर दोष देने का अच्छा उदाहरण एक राष्ट्रीय पत्रिका में छपे लिखे में था है। एक महिला मेरी बैटल्स का घर अस्पताल के दरवाजे के आसमान सामने सड़क के उस पर स्थित था। उसका परिवार मुख्य मंजिल पर था और ऊपरी मंजिल पर अस्पताल के बाहर के मरीज बड़े पर रहते थे। एक शाम एक बहुत बुरा दिखने वाला आदमी उसके द्वार पर आया रात गुजारने के लिए। वो खुबड़ा और मुरझाया था और उसका चेहरा सूजने का कारण एक तरफा था, लाल और पतला। उसने कहा कि वो दोपहर से एक कमरा ढूंढ रहा था। मेरा अनुमान है कि मेरा चेहरा के कारण, उसने कहा। मैं जानता हूँ कि ये बहुत बुरा दिखता है। उसने कहा कि वो बाहर रखे गए धोने वाली कुर्सी पर सो लेंगे। उसे बात करते समय मेरी को लगा कि इस छोटे बूढ़े आदमी के शरीर में एक बहुत बड़ा दिल है। सोने के समय मेरी के पति ने एक पोर्टेबल हल्का खाट लगाया उस आदमी के लिए। जब उसने सुबह जांच की, कंबल अच्छी तरह से बिछे हुए और वो बाहर था। वो नाश्ता नहीं चाहता था, मगर अपने बस में जाने से पहले उसने पूछा कि वो अगले इलाज के समय वहाँ ठहर सकता है। मैंने तुम्हें कोई खर्च नहीं दूंगा, उसने वादा किया। मैं कुर्सी में अच्छी तरह से सो सकता हूँ, मैंने कहा कि हो रह सकता है। उन सभी वर्षों में जब वो इलाज के लिए गया और मेरे के घर पर ठहरा, बुरा आदमी जो मछुआरे का काम करता था अपने साथ समुद्र भोजन का अपने बगीचे और सब्जियां ऊपर उपहार के रूप में लाता था। जब मेरी को ये अच्छे उपहार मिले, वो अक्सर अपने पड़ोसों के बात को याद करती है। जब वो बुरा दिखने वाला खुबड़ा बुरा आदमी मेरे के घर से जा रहा था, मेरी जानती थी कभी कभार उन्होंने घर का खोई थी, मगर उसने सोचा अगर सिर्फ वो उन्हें पहचानते शायद उनके बीमारी आसान से समझ पाते। जब उस आदमी की मृत्यु हुई हो चुकी थी, मेरी अपने एक सहेली के से मिलने गई जिसके पास एक प्रशाला था। अपने सहेली के फूलों के देखते देखते उसने एक सुंदर सोने के रंग का क्रिसेंथेमम फूल देखा, मगर आश्चर्य हुए उसके देख भर दबे पुराने मुरझाए बटली में देखकर। मेरे पास कम बतलियाँ थे और जानते हुए कि यह फूल कितना सुंदर होगा, मैं सोचा वो इस पुराने बतली में शुरू होना कर बुरा नहीं मांगेगा। मेरे मुस्कुराए जब उसने स्वर्ग में इसी ही मंजर की कल्पना की, यह खासतौर पर सुंदर है। वो इस छोटे बिगड़े शरीर में शुरुआत करने का बुरा नहीं मांगेगा, मगर वो तो बहुत पहला था और परमेश्वर के बगीचे में इसी सुंदर आत्मा कितना ऊंचा खड़ा होगा। ऊपर के दिखावा कितना धोखा दे सकता है। यह व्यक्ति का इतना कम माप उधारकर्ता ने बतलाया, मुंह देकर दोष ना लगाओ। यह महिला संस्था के सदस्य ने एक बार शिकायत कि जब एक अन्य महिला को उस संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया, उसने उस महिला के से कभी मिला ना था, मगर उसने उसके एक तस्वीर देखा और पसंद नहीं किया क्योंकि वो बहुत मोटी थी। उसने कहा, इस संस्था के हजारों महिलाओं ने से जरूर कोई और बेहतर प्रतिनिधि चुना जा सकता था। सच में जिस महिला को चुना गया था प्रतिकारों के मोड़ने जैसे पतली नहीं थी, मगर जो उसे और उसके गुणों को जानते थे ने उसके तस्वीर से ज्यादा उसमें कुछ देखा। उस तस्वीर में जो नहीं देखता था वो था एक भरोसेमंद और दयालु दोस्त, एक समझदार महिला जो प्रभु से प्रेम करती थी और वो उनके बच्चों से प्रेम और उनकी सेवा करती थी। कुछ ही शब्दों में तस्वीर में नहीं दिखा और असल में कौन थी। मैं पूछता हूँ, अगर विचार भाव कर्म और आत्मा के पसंद शरीर पर दिखते, क्या उस महिला का चेहरा जिसने शिकायत की थी दोष लगाने वाली महिला से सुंदर होता? मेरे प्यारे बहनों, तुम में से हर एक अनुपम हो। तुम कई तरीकों से एक दूसरे से अलग हो। वहाँ हो है जो विवाहित है, कुछ अपने बच्चों से के साथ घर पर रहती है, कुछ घर से बाहर काम करती हो, कुछ को बच्चे अब साथ नहीं हैं, कुछ विवाहित है मगर जिनके पास बच्चे नहीं हैं, कुछ तालकशुदा है, कुछ जो विधवा है। तुम में से कई अविवाहित महिलाएं हैं, कुछ के पास कॉलेज की डिग्री है, कुछ के पास नहीं है। वहाँ हो है जो नवीनतम फैशन खरीद सकती है और वो जिनके पास सिर्फ एक अच्छा रविवार का कपड़ा है। ऐसे बनाते तो बहुत है, कैसे ऐसे बिनताएँ हमें एक दूसरे में दोष ढूंढने के लिए उत्साहती है। मादर टेरेसा एक कैथोलिक नन जो इंडिया के गरीबों के बीच अपने काफी जीवन कर्म करती रही ने ये सच्चाई बतलाई, अगर तुम लोगों में दोष निकालेंगे तुम्हारे पास उसके प्रेम करने से समय नहीं रहेगा। उधारकर्ता ने बतलाया, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मैं पूछता हूँ, क्या हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं जैसे उधारकर्ता ने आज्ञा दी, अगर हम एक दूसरे में दोष निकालेंगे? और मैं जवाब देता हूँ, मदर थ्रेसा के साथ नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। देवदत्त जेम्स ने सिखलाया, अगर कोई तुम्हारे मध्याह में धार्मिक दिखे और अपने जुबान को काबू ना करे मगर अपने ही दिल को धोखा दे, इस आदमी महिला का धर्म व्यर्थी है। दयालु का है क्या है? भविष्यवक्ता मोमन हमें सिखलाता है कि दयालु मसीह का सच्चा प्रेम है। लेमनास के लिए अपने आखिरी संदेश में मोरनाई ने घोषणा की, और अगर तुम्हारे पास दयालुता नहीं है तुम किसी भी तरह परमेश्वर के राज्य में बच नहीं सकते। मैं दयालुता है या मसीह का सच्चा प्रेम को बुरा विचार देने को और दोष लगाने पर विपरीत समझाता हूँ। दयालुता के बारे में कहता हूँ, मेरे मन में पीड़ित को सहायता देने का मतलब अपनी चीज़ों देना है, यह जरूर से उपयुक्त और ठीक है। आज रात हालांकि मेरे मन में वो दयालुता है जो अपने आप को दिखलाता है जब हम औरों को कर्मों के प्रति संचली और दयालुता रहते हैं। मेरे मन में वो दयालुता है जो हमें सहानुभूतिपूर्ण, रहमदिल और चंचल बनाता है, सिर्फ बीमारी और दुख और तकलीफ के समय नहीं पर औरों की कमजोरी या गलती के समय भी। एक बहुत बड़ी जरूरत है उस दयालुता की जो उन लोगों को सहायता देता है जिन्हें कोई देख नहीं सकते, आशा उनको जो निराश है, दुखी को सहायता दे सकती है। सच्चा दयालुता है जब प्रेम काम पर लग जाता है। दयालुता की जरूरत सभी जगह है।
The need for charity is everywhere.
जरूरत है उस दयालुता की जो औरों के दुखों को सुनकर यह बतलाता कर संतुष्टि नहीं पाना चाहता, सिर्फ उस समय जब ऐसा करने से अभाजी को कुछ लाभ होता होगा। अमेरिकन शिक्षक और नेता होरेस मैन ने एक बार कहा, दुख में दया दिखाना मानवीय है, उसे छुटकारा दिलाना परमेश्वर की तरह होना। दयालुता है ऐसे व्यक्ति के साथ धीरज से काम लेना जिसने हमें निराश किया है। हमें जल्द बुरा नहीं मानना है, उसका मतलब है कमजोरियों और गलतियों को अपनाना। उसका मतलब है लोगों को उसी तरह अपनाना जैसे वो है। उसका मतलब है शरीर के दिखावे से आगे देखना उन गुणों को जो समय के साथ कम नहीं होते। उसका मतलब है सबको अलग करने के उमंग को रोकना। दयालु है जब सच्चे द्वारा करने वाले शिक्षक हर महीने, हर वर्ष, हर दुखी जरूरतमंद बहन के पास आते हैं। वो देखता है जब एक बुरी विधवा को याद किया जाता और वोट के गतिविधियों में यह लाया जाता है और सहायक संस्था के गतिविधियों में भी। वो महसूस होता है जब सहायक संस्था में बैठे हुए बहन को निमंत्रण मिलता है, आओ हमारे पास बैठ जाओ। कई छोटे छोटे तरीकों से तुम सब दयालुता का उदाहरण हो। जीवन किसी के लिए संपूर्ण नहीं है। एक दूसरे में दोष निकालने और उनका बुरा बोलने के जगह हमारे में मसीह का सच्चा प्रेम हो उन साथ चलने वाले के लिए इस जीवन के यात्रा में। हमें ये पहचानना चाहिए कि हम सब पूरी कोशिश में लगे हैं उन चेतावनियों का सामना करने के लिए जो हमारे ओर आते हैं। दयालुता का अर्थ है सबसे ऊंचा, श्रेष्ठ और शक्तिशाली प्रेम है, मसीह का सच्चा प्रेम है, और ये अंतिम दिन को जिसके पास मिलेगा उसका भला होगा। दयालुता कभी टलता नहीं। आशा है कि ये हमेशा से कयाम सहायक संस्था उद्देश्य ये जन्मों की सच्चाई तुम्हें हर काम में मार्गदर्शन। आशा है ये तुम्हारे आत्मा तक पहुँचाए और तुम्हारे सभी सच और कार्य तक पहुँचाए। मैं अपना प्रेम तुमसे व्यतीत करता हूँ मेरे बहनों, और प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग के आशीर्वाद तुम्हारे हो हमेशा के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।